वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
आओ जो पल है हंसकर गुजारे। ओम शांति। वेलकम डॉक्टर प्रेम भाई। यूनिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन आप देखेंगे या आपको नीचे देखने का वक्त भी नहीं मिलेगा। प्रेम भाई की बहुत सारी विशेषता है लेकिन एक विशेषता मैंने देखी, जब ये चालू हो जाते हैं तो हम रुक जाते हैं, हम कुछ लिख नहीं सकते। आप इनके शब्दों के ऊपर इतना ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से डेवलप करते टॉपिक को। और मैं फिर से कह रहा हूं, ओपनिंग ध्यान में रखना, डेवलप किस तरह से कर रहे हैं वो ध्यान में रखना, और क्लोज कैसे कर रहे ध्यान रखना। अगर ज्यादा डेप्थ में जा रहे आपको लग रहा है भारी हो रहा है तो आप कह देना, प्रेम भाई थोड़ा स्लो कर देंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपके रेस्पॉन्स के वो तो देखते रहेंगे। डॉक्टर प्रेम मसन।
ओम शांति। एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है जो इस लेक्चर का मैसेज को कन्वे करेगी। मैं धीरे धीरे ही जाऊंगा और टॉपिक को कनेक्ट करते हुए जाऊंगा क्योंकि फिर थोड़ा गहराई में जा सकेंगे। सुबह का प्रेजेंटेशन डॉक्टर गिरीश पटेल ने आपको कंपाइल फॉर्म में दिया और मैं भी उसी को एक कंपाइल फॉर्म में दूंगा जिससे कि आप 2 घंटे आराम से कहीं भी, 4 घंटे कहीं भी उस लेक्चर को एक्सपांड कर सकते हैं। पर मैं इसको कंपाइल करके दूंगा क्योंकि कई चीजें रिपीट भी हुई है, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक ओस की बूंद पहाड़ पर रहती थी। ड्यू पॉइंट, ड्यू जो रहता है, ड्यू पॉइंट पहाड़ पर रहता था। चमकता हुआ चमकीला ओस की बूंद थी। ड्यू ड्रॉप होता है जिसको कहते हैं, ड्यू ड्रॉप इंग्लिश में। वो बहुत चमकीली बूंद थी। वो देख सोच रही थी एक बार कि मैं नीचे जाकर पहाड़ के नीचे क्या है देखूं। तो उसने अपनी यात्रा चालू करी। रास्ते में जंगल आया, जंगल में पेड़ थे, लकड़ी की स्मेल आ रही थी फ्रेश, तो उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसने झाड़ों से पूछा, मैं आपकी स्मेल ले लेती हूं। तो बोला, अच्छा हम दे देंगे पर आपकी फ्रेशनेस हमें दे देना। ओस की बूंद यानी शाइनिंग, ब्राइट रहती है। तो उसने अपनी शाइनिंग उसको दी और उसकी स्मेल ली। फिर आगे बढ़ी, रास्ते में काफी फूल थे तो फूलों की सुगंध उसको अच्छी लगी। तो उसने भी फूलों ने कहा, आपकी शाइनिंग मुझे दे दो और स्मेल हम देंगे। इस तरीके से इस जर्नी में जब वो नीचे पहुंचती है, वो ओस की बूंद जो शाइनिंग थी हल्की सी थी, वो ही ओस की बूंद डिसकलर्ड हो गई, उसकी शाइन खत्म हो गई और मोटी हो गई। ड्यू ड्रॉप वही मोटा हो गया क्योंकि इस जर्नी में उसने रास्ते में काफी चीजें एक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली। अब फिर एक दिन जब वो वापस एक ओस की बूंद को देखती है चमकती हुई, तो वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? क्योंकि वो भूल गई कि मैं भी एक दिन यही थी, पर इस जर्नी में मैंने कई चीजें प्राप्त कर ली। यही हमारे साथ जिंदगी में होता है, इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज ए जर्नी, जिंदगी एक यात्रा है। और इस यात्रा में हम भी क्या करते हैं, कई चीजें बीच में प्राप्त करते जाते हैं, एक्वायर करते जाते हैं, और धीरे धीरे एक्वायर करते हम लोग फंसते जाते हैं उस ट्रैप में। जैसे सुबह भी बताया, ट्रैप में फंसते जाते हैं, भारी हो जाते हैं और फिर वापस उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करते हैं, तो तब प्रॉब्लम, हमारे रिस्पॉन्सेस हेवी हो जाते हैं और हम उन सिचुएशंस का सामना ठीक तरह से नहीं कर सकते। इसीलिए लाइफ को कहा गया फ्लो ऑफ energy and information in the form of love. Life is a flow of energy and information. हमारा हर विचार एक एनर्जी और एक इंफॉर्मेशन लेकर बॉडी के अलग अलग सेल्स में इंटरैक्ट करता है, हिट करता है. इसीलिए कहा गया क्वांटा. क्वांटा मीन्स बंडल ऑफ एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है. तो ईच थॉट कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. इसीलिए लाइफ का मतलब है फ्लो. लाइफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी. एक बहुत अच्छी कहावत है, वॉट एवर इज फ्लोइंग एंड फ्लेक्सिबल दैट विल ग्रो नेचुरली, वॉट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाय. इसका अर्थ है जो चीज जितनी बहती है, फ्लो करती है, जो चीज जितनी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो चीज बढ़ती जाती है. जो चीज रिजिड होती है, सख्त होती है, ब्लॉक होती है, वो चीज खत्म हो जाती है. ये लाइफ का इटर्नल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रोथ है. इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे मेडिटेटर्स हैं चाहे नॉन मेडिटेटर्स हैं. अगर आप में एनर्जी फ्लो कर रही है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हमारी एनर्जी बॉडी के हर सेल से सर्कुलेट हो रही है, तो मेरी ग्रोथ होगी. फ्लेक्सिबल है, इजी है पर्सनालिटी, लचीलापन है, मेरे जॉइंट्स जो ऊपर से नीचे तक हैं फ्लेक्सिबल हैं, तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा. जैसे जैसे मेरे में रिजिडिटी आती जाएगी, सख्त होते जाऊंगा, तो प्रॉब्लम आएंगे. इसीलिए कहा गया यूनिवर्स. यूनि मीन्स वन, वर्स मीन्स सॉन्ग. वन ब्यूटिफुल सॉन्ग. वी ऑल आर कनेक्टेड टू 6 बिलियन सोल्स ऑफ द वर्ल्ड. हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए कनेक्टिविटी को ग्रोथ कहा गया. कनेक्टिविटी मीन्स लाइफ. अल्टीमेटली हम भी अपने जीवन में कनेक्टिविटी चाहते हैं. कनेक्टिविटी यानी मैं अपने से कनेक्टेड हूं, मैं पूरे दुनिया से कनेक्टेड हूं. जब कभी भी डिसकनेक्शन चालू होता है, जैसे कल गुप्ता जी ने बताया, वर्टिकल डिसकनेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिसकनेक्शन, आइसोलेशन चालू होता है, और व्यक्ति आइसोलेट होकर रह नहीं सकता. वी ऑल आर सोशल बीइंग. और जैसे जैसे आइसोलेशन आता है, प्रॉब्लम्स चालू होते हैं. दूसरी जो गहरी इटर्नल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, हम सब स्टेबिलिटी की तरफ, परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. हमारा भी जो पर्टिकुलर एम है लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ. जैसे एटम में भी, मैटर में भी, एटम में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और उनका शिफ्टिंग चलता रहता है स्टेबिलिटी के लिए. सेम वे हर आत्मा भी जब ऊपर से आती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आती है, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी ये खाली होती जाती है, उसको फिर से स्टेबिलिटी चाहिए. और अगर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम्स चालू होते हैं लाइफ में. जितना व्यक्ति अंदर से खाली होता जाता है, जिसको कहा गया वैक्यूम होता जाता है, उतना वो बाहर से कवरिंग करना चाहता है. जितना वो अंदर से खाली होगा, उतना वो क्या कहेगा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, प्रूव करेगा, प्रूव करेगा और डिसप्रूव करेगा, मैं ये हूं. वो अपना बायोडेटा इतना बड़ा पढ़वाएगा, 2 पेज का 3 पेज का, वो लाइफ में बहुत चीजें एक्वायर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर से एम्प्टी है. अपने इस एम्प्टीनेस को वो कवर करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए हेवी होता जाएगा. और जितना हेवी होगा, उतना स्ट्रेस उसमें बढ़ती जाएगी. एक बहुत अच्छी, एक गुरु अपने, एक चेला अपने गुरु से कहता है, हम सभी इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं, दो वर्ल्ड हम सभी साइकोलॉजी में कहते हैं, सब्जेक्टिव वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी ये बाहरी दुनिया। तो उसने कहा हम सब इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में लेते हैं। उसके मास्टर ने कहा यस, बट तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस ये है कि यू सी योर सेल्फ इन द वर्ल्ड एंड आई सी द वर्ल्ड इन माई सेल्फ। तू बाहर दुनिया में रह रहा है इसलिए तरह तरह के प्रॉब्लम्स को देख रहा है, मैं वर्ल्ड मेरे अंदर है इसलिए मेरे को वो प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं करते। और केवल ये ही शिफ्ट सब डिफरेंसेस बना देता है, फ्रीडम एंड बॉन्डेज। ये दो ही लाइफ के खेल हैं। आत्मा ऊपर से जब आती है तो फ्री रहती है, उसकी पहली नेचुरल क्वालिटी आत्मा की रहती है फ्रीडम। इसीलिए हर आत्मा को फ्रीडम चाहिए रहती है, और जब कभी उसकी फ्रीडम ब्लॉक होती जाती है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ पर्पस, जैसे जैसे उसको ये रोका जाता है, ब्लॉक बना दिया जाता है, तो लाइफ में बॉन्डेजेस चालू होते हैं और हम उस कीड़े की तरह हो जाते हैं जो कीड़ा अपना ही जाल बनाता है और उसी जाल में फंस जाता है। अब उस कीड़े को जाल से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ता है? उसी जाल को खाना पड़ता है। इसी तरह से हम लोगों को भी अगर इसमें से निकलना है, इस ट्रैप में जिसमें हम खुद को फंसा देते हैं, तो हमें ही सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत उस अभिमन्यु वाली हो जाएगी कि जो अंदर तो चला गया पर बाहर आने का रास्ता नहीं था और डिस्ट्रक्शन को पाया। अब ये अलग अलग कोटेशन है, हर व्यक्ति जानता है स्ट्रेस क्या है, पर मेजॉरिटी को ये नहीं मालूम कि ये है क्या। शब्द सब जानते हैं पर है क्या। जैसे ही जिंदगी चालू होती है तनाव चालू होता है, बर्थ टिल, इसीलिए कहते हैं वूम टू टूम, वूम टू टूम स्ट्रेस चालू होता है। जैसे ही बच्चा सांस लेना चालू करता है, जिंदगी चालू करता है, पहला साइन वो क्या करता है? रोना। उसको पता लग जाता है कि अब लाइफ के प्रॉब्लम्स आना चालू हो गए। तो एज सून एज देयर इज लाइफ देयर इज डेंजर। इसीलिए कहा जाता है आज जिंदगी सुबह बी कॉम्प्लेक्स से चालू होती है और रात को एल्प्रेक्स पे खत्म होती है। तो आज हमारी लाइफ क्योंकि मैकेनिकल हो गई है, हर झगड़ा जीवन में जीरो से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है? आई एम द मास्टर, आई एम द कंट्रोलर। पूरा स्ट्रेस यहीं का यहीं घूमता है कि आई एम द मास्टर, आई एम द कंट्रोल, सुप्रीम, मेरे सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा कोटेशन है जॉर्ज बर्नार्ड का, जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो खुद में चेंजेस लाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, और जो बेसमझ रहते हैं वो वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी जो टोटल सिनेरियो है, मैं अपने मैकेनिज्म्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स इतने अच्छे बना लूं कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन को मैं एडॉप्ट कर सकूं, तो फिर मेरे लिए वो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एक तरह से गेम की तरह हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, स्टोरी नहीं, रियल उसका वो वर्शन है। वो बस्तर जाता है, एमपी का एक ट्राइबल एरिया है, नदी को पार करता है। उस नदी को पार करने के लिए एक बोट थी, नाव थी। उस नाविक से पूछता है तू कितना कमा लेता है रोज? तो वो कहता है ऑन एवरेज मैं 20 रुपए कमा लेता हूं। बोलता है ये जो गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है नदी के उधर, फिर तेरे को टेंशन नहीं होगा, तेरी कमाई दिन भर की चली जाएगी। बोला कोई बात नहीं, वो मेरे लोगों को हेल्प करेगी ब्रिज, मैं दूसरा कुछ तरीका कमाने का सोच लूंगा। पर यही अगर हम देखें आज जो स्ट्रेसेस अलग अलग तरह से आती है कॉम्पिटिशन्स के कारण, चाहे वो किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन्स हैं, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल सोशल, उनमें हमें टेंशन आ जाता है, अब मेरा क्या होगा। ये एक वर्ड ही स्ट्रेस को चालू कर देता है, अब मेरा क्या होगा, मेरा इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो फियर टू लूज सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, वो मुट्ठी इसीलिए पकड़ के हमेशा रखता है, वो मुट्ठी से पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर लाइफ का अर्थ है फ्लो। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, केवल परमात्मा को छोड़ के हम हमारी एनर्जी इसी में लगा देते हैं और फिर हमारे जो मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति ने कहा, वो व्यक्ति नेचुरल स्पिरिचुअल पर्सन है, उसमें नेचुरल स्पिरिचुअल विजडम है कि उसने अपने को एडॉप्ट कर लिया। स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेटली क्या सिखाती है, एडॉप्टिव मैकेनिज्म सिखाती है। जरूरी नहीं कि हम एक पर्टिकुलर उसको फॉलो करते हैं, हमारे में ही एडॉप्टिव मैकेनिज्म है, दुनिया में कईयों में ये नेचुरल एडॉप्टिव मैकेनिज्म रहते हैं। तो हमें भी पहली चीज क्या करनी है, नेचुरल बनते जाना है। टोटल फिलॉसॉफी स्पिरिचुअलिटी की यहीं पर है, यू बिकम नेचुरल, जो आप हो वैसे आप अपने बनते जाओ। ये हमारी टोटल लाइफ स्टाइल है जो अलग अलग फैक्टर से बनती है। मेरा पैदा कहाँ हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे, एजुकेशन क्या था, मेरा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मेरा वर्क क्या है, ये मेरे कई मल्टीपल फैक्टर्स से मेरी जिंदगी बनती है। नेक्स्ट। अब देखें, कभी ऐसा देखा अपने को, हमने कभी अपना एनालिसिस करें, नेक्स्ट लिख मत लिख, ऐसा ऐसा ये सब कब होता है, जब हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, हम लास्ट मोमेंट कोई भी चीज को करने की कोशिश करते हैं और उसी में ही स्ट्रेस चालू होता है। ये वर्ल्ड चेंज का जमाना, 21वीं सदी क्या है, चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो चेंज इज देयर। अगर हम इस चेंज को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो 1937 में चेंज था और अभी का चेंज है, जैसे दादी ने भी कल कहा, फास्ट चेंजिंग, और उस चेंज को अगर हम अच्छी तरह समझते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होगा, पर हम वही मैकेनिज्म को लगाने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। तो 21वीं सदी क्या कह रही है, चेंज, और इसीलिए अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है लाइफ में, अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण व्यक्ति एंजाइटी फियर अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे एक अगर बच्चा है और बच्चे के साथ उसकी मां खड़ी है, बच्चा है छोटा, लेटर से 3-4 साल का, और मां खड़ी है, बच्चे को सडनली कुछ डरावना सीन दिखता है या कुछ उसके अंदर चलता है, तो पहला मैकेनिज्म बच्चा क्या करेगा, मां को पकड़ लेगा, अटैच हो जाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कभी भी डर बढ़ता जाता है तो मैं क्या करता हूं, अटैच होता जाता हूं, पकड़ता जाता हूं, पकड़ूंगा, और जितना डर लगेगा उतना मैं अटैच होते जाऊंगा। इसी कारण जब कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है कोरोनरी वेसल्स में, फियर जितना मेरा यहां डर होगा, कोलेस्ट्रॉल उतना चिपकना चालू होगा, अटैचमेंट यानी चिपकना, जितना डर यहां चालू होगा उतना कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी में चिपकना चालू होगा। फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट इन द माइंड, देन ब्लॉक स्टार्ट इन कोरोनरीज। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने फियर्स को रिमूव करते जाएं, हटाते जाएं, क्योंकि फियर ही अटैचमेंट देता है, फियर ही हमें हमारी एनर्जी को खा जाता है, और इसीलिए दो फैक्टर्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये सडन चेंज आया। अब आप देखते जाओ ट्रांसपेरेंसीज भी कैसे आपको क्रिएट करना है, इसीलिए कॉपी नहीं करना। आप देखोगे कि कोई भी चित्र किसी से कॉपी नहीं करेंगे, आप अपना नेचुरल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी आपको मदद करेगी। जैसे सचिन ने कहा कि हर आत्मा में अपनी एक यूनिकनेस छिपी हुई है, उस यूनिकनेस को आप एक्सप्रेस करोगे तो उसका मजा अलग रहेगा और आप नेचुरल रहोगे। कवरिंग नहीं करना, लेक्चर में कभी भी कवरिंग नहीं करना, नेचुरल होकर बोलना है, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हो। लेक्चर नहीं देना, इट इज ए शेयरिंग, यू आर टॉकिंग टू पीपल, बस उनको लगे कि ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है, इसको भी प्रॉब्लम आते हैं पर ये प्रॉब्लम का फेस अच्छी तरह कर लेता है। उनको ऐसा नहीं लगे कि ये व्यक्ति अलग है और हम अलग हैं, तो तब फिर डिसकनेक्शन चालू हो जाता है। लोग यहां वाले सोचते हैं ऑडियंस ये जैसा तो हम कर नहीं सकते, इन्होंने जो किया है, तो वो थोड़ा फिर एक्सेप्ट करना चालू नहीं करता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे लोगों से कनेक्शन चालू करना पड़ता है कि हम उनके अंदर जाकर बैठ गए और उसके अंदर जो चल रहा है वर्ल्ड की लाइफ में, तब फिर आपका लेक्चर नेचुरल चलेगा। तो चेंज चल रहा है, चेंज यूनिवर्सल लॉ है। नेक्स्ट, ये खाली पैटर्न बता रहा हूं कि देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आया। अब लाइफ क्या है, अपन एक गीत सुनेंगे, लाइफ क्या है, पहले जिंदगी क्या है, एक बहुत अच्छा गीत जो मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में भी अभी प्ले किया था, उसको फील करना गीत को, साउंड थोड़ा अंदर जाते जाइए और सॉन्ग को फील करिए। जिंदगी क्या है, दोनों है, गम का सागर भी है तो हमें क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपना सिलेक्शन भी रख सकते, और सबसे अच्छी चीज उनको लगी उस टोटल डेढ़ दिन के सेशन में कैसेट सॉन्ग्स, कहते हैं ये हमें गिफ्ट में देके जाओ। उसमें मैंने अलग अलग स्ट्रेस के गीत सिलेक्ट किए होंगे, कुछ अपने कुछ बाहर के जो पावरफुल गीत होते हैं, और दोपहर के समय 1 to 2 to 3:30 हम यही करते थे, गीत प्ले करते थे, उनको बिठा देते थे और वर्कशॉप चलाते। तो लाइफ है हमारी चार चीजें, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स एंड रूटीन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोल। जो व्यक्ति अपने जीवन का रोल समझ लेता है, जिसको कहा जाता है पर्पस समझ लेता है, वो व्यक्ति को कोई भी सिचुएशन आती है उसका सामना अच्छी रीति समझ कर लेता है। इसीलिए टोटल साइकोलॉजी, टोटल स्पिरिचुअलिटी यहां आकर एंड होती है, नो योर सेल्फ, आप अपने को जानिए, लव योर सेल्फ, जो क्राइस्ट ने कहा था, नो योर सेल्फ कहा था मार्कस ने, कि आप अपने को जानिए। और परमात्मा भी हमें क्या सिखाता है, नो योर सेल्फ, अपने को आप पहचानिए, लव योर सेल्फ, आप अपने को प्यार करिए, जब तक हम अपने को पहचानेंगे नहीं, मेरे रोल को समझेंगे नहीं, तो ये जो तीन चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम आएंगे। अगर मेरा रोल क्लियर है, पर्पस क्लियर है, कोई भी सिचुएशंस आई, मल्टीपल सिचुएशंस आई, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई, हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने उसको क्रॉस करते गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसी तरह से जीवन में हम पहले अपने को पहचाने, अपने को जाने और अपने को प्यार करें, तब हम जीवन की सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। पर जब हम ये नहीं पहचानते तो हम भारी चीजों का सहारा लेते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारी एनर्जी चली जाती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी व्यक्ति की इसी में जाती कि मैं कुछ हूं। अपना जो ईगो वाला वो इंपॉर्टेंस नहीं छोड़ता है तो उसमें उसकी एनर्जी मैक्सिमम चली जाती है। अगर ईगो को देखें, ईगो तीन शब्दों से बना हुआ है। ई का क्या मतलब है? एनर्जी, गो, एनर्जी गो। अगर वो ईगो वाला है तो उसकी एनर्जी जाती ही जाएगी, हमेशा वो प्रूव करेगा, डिसप्रूव करेगा, तना हुआ रहेगा, गर्दन अकड़ी रहेगी, मुट्ठी बंद रहेगी, हमेशा तना तना चलेगा। इसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी गर्दन हमेशा ऊपर ही रहेगी, इधर क्या है, इधर क्या है, पीछे क्या है, उसको पता नहीं। और दूसरी पर्सनैलिटी रहती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी वाला ऐसा गर्दन करेगा, इन्फीरियरिटी वाला ऐसा। तो वो लोग जब भगवान के सामने भी जाते हैं तो भगवान कंफ्यूज हो जाता है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, इसको चाहिए क्या। नॉर्मल ह्यूमन पोस्चर क्या है? सीधा गर्दन, बैक पोस्चर, नॉर्मल ओपन, जिसको कहते हैं ओपन पर्सनालिटी। आपकी मुट्ठी टाइट नहीं होना चाहिए, कभी भी लेक्चर में खुला होना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं नेचुरल पर्सनालिटी। दोनों में डिस्टेंस होना चाहिए, क्रॉस पर्सनालिटी भी नहीं होना चाहिए, हाथ में जेब डाल के भी लेक्चर नहीं देना चाहिए। हमेशा भाइयों को, बहने तो नहीं रहती, हाथ में कोई भी चीज को आप खेलो मत। तो ओपन पर्सनालिटी, और हमारी टोटल एनर्जी इन सेवन पीस में चली जाती है। इन सात पीस को हर व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता है, और फिर उसकी एनर्जी इसमें वेस्टफुल होती है और वो खुद को इसमें भूल जाता है। आठवां पी पर्सनालिटी, जो मैं हूं, उसको भूलकर जब हम इन सेवन पीस के चक्कर में फंस गए तो लाइफ में घूमते ही रह जाते हैं। अब स्ट्रेस के कारण क्या है? कौन सा सेवन वो दिखा दो। चलो ये आप लोगों को माल, इसीलिए मैं फास्ट जा रहा हूं कि नहीं पता। अच्छा चलो, पहला है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का अर्थ होता है इज्जत। दूसरा है पजेशन, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। कई लोग रहते हैं ना, अपना कार्ड दिखाएंगे, बोलेंगे मैं प्रेसिडेंट हूं। आजकल तो ईमेल का जमाना है तो पहला ही कार्ड दिखाएंगे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये नहीं बोलेगा वो कौन है, पहले ये बोलेगा मेरा मोबाइल नंबर ये है, ईमेल नंबर ये है, वेबसाइट ये है। वो कौन है वो पता नहीं रहता। तो पोजीशन, पेनी यानी पैसा, पोजीशन, मैं डायरेक्टर हूं, ये डिफरेंस है अमेरिका और इंग्लैंड पैटर्न में। और हम लोग भी इंग्लैंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहां किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सिंह। अमेरिका में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये मिस्टर सिंह है प्रेसिडेंट। इस और कितना फर्क हो गया, एक लेबल को इंपॉर्टेंट दे रहा है और एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दे रहा है। और हम लोग भी इंडियन जो है ब्रिटिश ओरिएंटेड पर्सनालिटीज हैं, तो हम लोग भी लेबल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। लेबल वाला होगा तो हम भी तन के खड़े हो जाएंगे, और लेबल वाला नहीं होगा तो उससे एकदम आराम से बात करेंगे। जैसे ही बताया ये डायरेक्टर है, हमारा पोस्चर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो हम लोग लेबल को देते हैं। और वहां अमेरिका में आप प्रेसिडेंट से भी मिल रहे हो, मिस्टर क्लिंटन, मिस्टर बुश, तो वहां डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर क्लिंटन सर, रिस्पेक्टेड मिस्टर क्लिंटन सर, ऐसा कुछ नहीं। वहां कोई नहीं, प्रेसिडेंट मिस्टर क्लिंटन, बस मिस्टर क्लिंटन प्रेसिडेंट। तो वहां वो लोग लेबल को इंपॉर्टेंट नहीं देते, इतनी गाड़ियां नहीं जाती है, एक के पीछे 25-30 गाड़ी, प्रेसिडेंट जा रहा पता नहीं लगता। और हम लोगों के यहाँ क्या शिकायत दिया गया, लेबल्स को इंपॉर्टेंट दिया गया, इसलिए एनर्जी उसमें चली जाती। इसलिए ज्ञान में भी आने के बाद कभी भी लेबल्स को इंपॉर्टेंट नहीं दो, आराम से नेचुरल पर्सनैलिटी होकर गेम को खेलो। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसकी रेस 100 मीटर रेस नहीं है, इज ए मैराथन रेस। और इस मैराथन रेस में आप जितना नेचुरल इजी होकर जाओगे मैच को जीतोगे। कंपटीशन में आओगे तो उसमें भी सांस फूलना होगी, दर्द होगा, प्रॉब्लम आएंगे। अब ये अलग अलग कारण हैं स्ट्रेस के, अलग अलग हर प्रोफेशन में अपने अपने कारण रहते हैं। ये आप अपने भी बना सकते हो, उनसे पूछ भी सकते हो, बोर्ड पे लिख भी सकते हो। आपके प्रोफेशन में क्या है, पुलिस वाला है, वकील है, डॉक्टर है। ज्यादातर ये चार बेसिक सिचुएशंस रहती स्ट्रेस में, सेल्फ, मैं खुद, फिर तीसरा सेकंड संबंध रिलेशनशिप, थर्ड वर्क, चौथा सिचुएशन। ये चार चीजों में ही टोटल लाइफ घूमती है। खुद से स्ट्रेस हो सकती है, मेरी पर्सनालिटी अगर कमजोर है, इन्फिरिटी है, लो सेल्फ इस्टीम है, मेरा देखने का ही नजरिया ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा रोल ठीक नहीं है, मेरा ये जगह ठीक नहीं है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, तो ये हो गया सेल्फ, रिलेशनशिप, संबंध। तीसरा है वर्क और चौथा है सिचुएशन, सिचुएशंस जो चलती रहती। इन चार से ही स्ट्रेस कहीं ना कहीं से घुस सकती है। अब इसको टोटल मैंने किया है 5 मेजर कारण, साइकोलॉजिकल कारण, या मैं इनको कहता हूं साइको स्पिरिचुअल रीजंस। ये हर व्यक्ति में फिट हो जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी वर्ल्ड का सिटीजन है, अमेरिकन है, ब्रिटिशर है, इंडियन है। ये 5 बेसिक रीजंस मैंने अपने आप जोड़े हैं। पहला कारण है, हर व्यक्ति अपना एक एजेंडा लेकर आता है इस दुनिया में। वो क्या करता है, अपने खुद के एजेंडा से वर्ल्ड के एजेंडा को देखना चाहता है। अगर दोनों एजेंडा में मिक्सिंग नहीं होती है, स्ट्रेस चालू होता है। और हम सभी जानते हैं मेरे एजेंडा से दुनिया नहीं चलेगी, तो अपना पर्सनल एजेंडा को मिक्स मत करो वर्ल्ड के एजेंडा से। गॉड का प्लान अलग है, मेरा प्लान अलग है। मैं सोचूं मेरे प्लान से दुनिया चले, मुश्किल है। तो पर्सनल एजेंडा को मिक्स ना करो। इसीलिए ईगो को कहते हैं एज गॉड आउट, एज गुड आउट। जिस व्यक्ति ने गुड आउट कर दिए, बाहर कर दिए, एज कर दिए, निकाल दिए, वो व्यक्ति में ईगो आना चालू होता है। दूसरा है, वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थर्ड कारण है, लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों को दे देता है, दूसरे जैसा बोलेंगे वैसा मेरा बिहेवियर हो जाता है। चौथा है रेजिस्टेंट टू चेंज, जैसे चेंज आ रहा है आज जो वर्ल्ड में, हमारे यहां भी, उस चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं, नहीं नहीं यही ठीक है, यही मेथोडोलॉजी ठीक है, तो उनमें भी चेंज खा जाता है, उनको चेंज खत्म कर देता है। और फिफ्थ है फियर, और फियर के कारण जैसे मैंने कहा अटैचमेंट है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति ने मुझे बताया, जो स्टोरी बहुत अच्छी उसने जोक के रूप में बताई, डॉक्टर ही था, कहता है ऐसे, ये जो कोटेशन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, हर व्यक्ति को जीवन में 2 बार ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ता है। पहली जब उसकी इच्छा होती है, मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसमें स्ट्रेस रहती है, और जब आ भी जाती है तो दोनों में ही ट्रेजेडीज फेस करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहानी इस डॉक्टर ने बताई थी, वो छोड़ देता हूं, अपन ले लेते हैं कार। कार का मैंने सोचना चालू किया कि कार आ जाए तो तब मैं खुश हूंगा, ये हूंगा, और जैसे ही कार आ गई और कुछ स्क्रैच हो गया तो प्रॉब्लम चालू हुआ। तो ये 2 ट्रेजेडीज हर व्यक्ति को फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, एक व्यक्ति अपने घर में मकान ठीक करने के लिए एक प्लंबर को हायर करता, प्लंबर जो ये नल वल लगाते हैं, बाथरूम फिक्स करते हैं, उसको हायर करता है और दिन भर वो काम करता रहता है प्लंबर। बीच बीच में उसको कई प्रॉब्लम आते हैं प्लंबर को, उसकी मशीन खराब हो जाती है, उसका दूसरा प्रॉब्लम आता है और लास्ट में शाम के समय उसकी कार जिसमें प्लंबर आया था वो भी खराब हो जाती है, चलती नहीं है। प्लंबर बड़ा निराश थका हुआ बैठ जाता है। जिस व्यक्ति ने इसको लिया था, हायर किया था, बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूं। ये व्यक्ति अपनी कार में इस प्लंबर को घर ले जाता है, उसके घर। रास्ते में प्लंबर आराम से शांति से बैठा रहता है, थका थका। जैसे ही घर आता है, घर में घंटी दबाने के पहले उस पेड़ के पास जाता है जो उसके घर में लगा था, उस पेड़ को टच करता है, फील करता है और एकदम खुश हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। घंटी दबाता है, उसकी वाइफ आती, बच्चे आते, सबसे गले मिलता है, इंट्रोड्यूस करता है उस व्यक्ति से। ये व्यक्ति देखता है, ये व्यक्ति दिन भर इसको इतने प्रॉब्लम आए, ड्रिल मशीन खराब हो गई, कार खत्म हो गई और फिर थक गया और अब एकदम चेंज हो गया पेड़ को टच करके। तो वापस जब जाता है तो उस व्यक्ति से पूछता है, तेरे इतने सारे प्रॉब्लम थे दिन में और जैसे ही उस पेड़ के पास गया तू ठीक हो गया, उस पेड़ में क्या जादू था? तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, हर दिन काम करता हूं, हर दिन मुझे प्रॉब्लम आते हैं, पर जैसे ही मैं घर जाता हूं इन प्रॉब्लम्स को उस पेड़ पर लटका देता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरे हैं, ये प्रॉब्लम मेरे वाइफ और बच्चों के नहीं हैं। और जैसे ही मैं घर में जाता हूं वापस नॉर्मल हो जाता हूं। दूसरे दिन जब मैं उन प्रॉब्लम्स को लेने की कोशिश करता हूं वापस, तो 10 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम रह जाता है। हम क्या करते हैं, हमारी फाइल्स को मिक्स करते जाते हैं, काम की फाइल, स्पिरिचुअल लाइफ, ज्ञान की लाइफ, सबको मिक्स कर देते हैं और इसके कारण स्ट्रेस चालू होती है। चाहे बाहर वाला व्यक्ति अपने वर्क की फाइल को मिक्स कर देगा, घर की फाइल वर्क पे ले जाएगा, वर्क की फाइल घर पे ले जाएगा। इसीलिए कहा गया लाइफ में 10% एक्चुअली होता है, 90% क्या होता है हम उस सिचुएशन से कैसे सामना करते हैं। 10% केवल एक्चुअली होता है, 90% हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए कहा गया स्ट्रेस इज अब्सेंस ऑफ द सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस नहीं रहते तब स्ट्रेस रहता है। 1/3 प्रॉब्लम कहां है? 1/3 प्रॉब्लम हमें जिंदगी में क्यों आते हैं? क्योंकि हम जिंदा हैं, जिंदा है इसीलिए प्रॉब्लम आते हैं। खत्म हो जाएंगे, डेड बॉडी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। इसलिए अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? शमशान में जाके सो जाए, कब्र में सो जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। पर जिंदगी है तो सिचुएशन आएगी, मैच होगा, अफ्रीका से होगा, साउथ अफ्रीका से होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा, इंग्लैंड से होगा, बांग्लादेश से होगा। जिस दिन बांग्लादेश से होगा अच्छी तरह पिटाई करेंगे, साउथ अफ्रीका से होगा कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ेगा, मैच तो होगा। ऐसा सोचें कि मैच ही नहीं हो, प्रॉब्लम ही नहीं आए, पेपर ही नहीं आए, भगवान मुझे ऐसी सिचुएशन दे दे मेरे को कुछ भी नहीं आए, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो आएंगे। दूसरा है, दूसरे 1/3 हम खुद क्रिएट करते हैं और तीसरा 1/3 ग्रीड और ईगो के कारण आता, लालच और अहंकार के कारण प्रॉब्लम आता है। आगे बढ़े, ये तो डेफिनेशन है। मेजर डेफिनेशन क्या है कि जब कभी भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमारा मन और शरीर उस सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें मदद करता है। जब कभी ये मदद हमारी कमजोर रह जाती है, सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब वही सिचुएशन स्ट्रेस बन जाती है। अदरवाइज परमात्मा ने हमें इतनी असीम शक्ति दी है कि हर सिचुएशन का हम अच्छी रीति सामना कर सकते हैं. इनेबिलिटी टू कोप अप, इनेबिलिटी टू मैनेज चैलेंजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्ट्रेस. ये तीन चीजें होती है स्ट्रेस में. अलार्म रिएक्शन पहली चीज होती है, घंटी बजी, जैसे कल डॉक्टर गुप्ता ने बताया, मैसेज गया और माइंड ने क्या किया, बॉडी को मैसेज दिया. और फिर बॉडी क्या करेगी, हमारे दो तारे जो बताई, कौन कौन से बताई कल तारे, हाँ, लाल और ग्रीन, एक ठंडी तार और एक गर्म तार. स्ट्रेस में क्या होता है, केवल आप लोग ये समझो कि हमारे माइंड से जो नसें गई है, नर्वस सिस्टम गया है, वो बॉडी के हर ऑर्गन में गया है, दो तरह की तारे गई है. स्ट्रेस में हमारी गर्म तार ज्यादा काम करने लगती है और उसके कारण बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, ज्यादा केमिकल बनने लगते हैं और वो धीरे धीरे हमारे को नुकसान करना चालू करते हैं. बेसिकली उससे क्या होता है, बॉडी में सब चीजें बढ़ जाती है. अब सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए रहता है, हमारी एनर्जी जाती है रिपेयर प्रोसेस में, रिपेयर चलती रहती है. बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, डैमेज भी होता है रिपेयर भी होता है. पर जब स्ट्रेस रहती है तो हमारा रिपेयर रुक जाता है और उसके कारण बीमारियां चालू होना हो जाती है. सबसे ज्यादा ब्लड डाइजेशन को चाहिए, उसके कारण फिर ब्रेन में जाता, रिपेयर में जाता. अब स्ट्रेस में हमारा ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाता, शट हो जाता है. इसके कारण खाना देर से पचता है, एनर्जी नहीं बनती है और बीमारी होना चालू हो जाती है. ये कुछ पर्सनैलिटी है जिनको स्ट्रेस ज्यादा आती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक धारणाएं रहती हैं, ये लोग परफेक्ट लोग रहते हैं. वो सोचते हैं हर चीज में मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए, मेरी वाइफ अच्छा होना चाहिए, जब कोई घर में आए तो मेरे बच्चों को उनको नमस्ते करना चाहिए. कई माता पिता कहते हैं ना, अंकल को नमस्ते करो, ओम शांति बोलो, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाएंगे. उनको लगेगा ये ओम शांति नहीं बोलेगा तो हमारी प्रेस्टीज जाएगी. तो उनको लगता है हमारा हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरे को हर चीज पहले पता हो जाना चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन मुझे पता होना चाहिए, कोई गड़बड़ घर में नहीं होना चाहिए, बच्चे आए तो चुपचाप बैठ जाएं लोगों के सामने. अब आप बैठो, कोई आया और छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे बैठ जाएंगे क्या, थोड़ी देर बैठेंगे फिर मस्ती करेंगे, उनका नेचर है. पर हम ये लोग क्या समझते हैं कि उनको भी चुपचाप बैठ जाना चाहिए, परफेक्शन. तो जैसे कल बताया कि परफेक्शन इज पैरालिसिस. जो लोग परफेक्शन की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज है, ट्राई करना चाहिए, पर उसका हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. कई ऐसे होते हैं, ये चित्र ऐसा का ऐसा ही लगना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो उनको स्ट्रेस आ जाएगी. तो ठीक है, अगर वो लगा सकता है तो लगाए, नहीं लगा सकते, उसकी वाइफ ऐसी है, उसके घर में ऐसी है, बाई ऐसे ही सफाई करके जाएगी. हर बाई क्या करती है, चाहे यहां बाई हो चाहे वहां बाई हो, दिल्ली में सफाई कैसे करेगी, एक सेकंड में बाहर होगी. आप एक्सपेक्ट करो वो भाई नीचे से भी साफ करे, ऊपर से भी करे, पॉसिबल नहीं. और ज्यादा झगड़ा हाउसवाइफ का कैसे चलता है, उससे चल. अगर वो इतनी परफेक्ट होती तो वो मैनेजर बन जाती, आपके घर में क्यों सफाई करती. तो ये हो गई हमारी स्टबर्न पर्सनालिटी. स्टबर्न पर्सनालिटी इसको कहते हैं, स्टबर्न, हर चीज मेरे अनुसार होना चाहिए. दूसरी है, दूसरी पर्सनालिटी जो अपनी बात दबाते रहते हैं, जैसे कल भी काफी डिस्कशन हुआ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और चार इमोशन हर व्यक्ति को चाहिए. पर्सनालिटी फॉर्मेशन में चार चीजें हरेक की भूख है, भूख है. चार इमोशन जिंदगी में हर व्यक्ति को चाहिए. पहला है सिक्योरिटी, सुरक्षा. अगर इनसिक्योरिटी आती है तो टेंशन चालू होता है. तो सिक्योरिटी पहला चाहिए, सुरक्षा सबको चाहिए, इसीलिए तो टेंशन आते हैं ना. सिक्योरिटी नहीं रही, सरेंडर हो गए, अगर क्या होगा, अगर घर भेज दिया गया तो स्ट्रेस चालू हो गया. तो सिक्योरिटी चाहिए. दूसरा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता चाहिए, एक्सप्रेस करूं मेरे अंदर जो है उसको मैं लोगों के सामने रखूं, एक्सप्रेस करूं। थर्ड, एडवेंचर, नई नई चीजें करूं। हमारे पास होते ना यंगस्टर, नई नई चीजें चाहिए, ये कर लें, क्रिएटिविटी, एडवेंचर। तो एडवेंचर भी हर एक की इच्छा रहती है। और चौथा है, अब यहां आके गड़बड़ चालू हो जाती है, चौथी चीज वो नहीं निकलती, चाहे हम बहुत स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते, बहुत डीपली जाती और बाबा की पूरी मूल्यां उसी पे चलती रहती है। रिकॉग्नाइजेशन, मेरे को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। जब तक मेरी कोई पीठ नहीं थपथपाए मेरी सेल्फ स्टीम इंप्रूव नहीं होती। और रिकॉग्नाइजेशन पर जब हम डिपेंड होने लगते हैं, इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति को स्ट्रेस आएगा ही आएगा। इसीलिए रिकॉग्नाइजेशन को अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मुझे दूसरों से रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए। हमें तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है स्पिरिचुअलिटी में, पर बाहर वालों को रिकॉग्नाइजेशन तो चाहिए। तो हमें रिकॉग्नाइजेशन हम खुद को दे सकते हैं। रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी डे, आप अपनी पीठ रोज थपथपाइए, प्रेम तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। कोई आपकी नहीं थपथपा रहा है, आप अपनी थपथपाओ, रिकॉग्नाइज करो कि यस आई एम नीडेड, आई एम केपेबल, मेरी वर्थ है। हर आदमी को क्या भूख रहती है, आई एम नीडेड, मेरी जरूरत है, मेरी कुछ वर्थ है। अगर सामने वाले आपको वर्थ नहीं दे रहे हैं, वैल्यूएबल नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी वैल्यू करो, खुद की करो। तो रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, ये चार भूख सबकी रहती है। और चारों से अगर फ्री होना चाहते हैं तब हमारे को चाहिए आर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एसक्यू कंसेप्ट। मैं उनको उस समय नहीं बताता, मैं उनको फिर लास्ट में ले जाता हूं। अगर चारों से बचना है तो देन वी विल टीच यू एसक्यू कंसेप्ट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मैं उनको उस समय राजयोग मेडिटेशन नहीं कहता हूं, मैं उनको कहता हूं एसक्यू आपको सीखना पड़ेगा, तब आपको वो चारों भूख खत्म होगी। तो ये है पर्सनालिटी, एग्रेसिव पैसिव। ना मुझे एग्रेसिव होना है ना स्पिरिचुअल कोशंट। आजकल तीन नई चीजें, जो एक नई चीज जुड़ी है, जनरली हम ये शब्द यूज करते हैं जब बहुत टॉप लेवल के लोग बैठे हुए हैं घुमाने के लिए, उनको उनको लगता है इन लोगों को बहुत आता है, तो उनको सिंपल लैंग्वेज से नहीं पिटाई करते हम, उनको हायर लैंग्वेज से पिटाई करते हैं। जैसे अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में भी जो टर्मिनोलॉजी मैंने शुरू की, फर्स्ट लेक्चर मुझे लेना था, तो मैंने कहा आईक्यू इज देयर, ईक्यू इज देयर, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंट इज देयर, ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चंट इज देयर, वो मैं आपको बताऊंगा। और एसक्यू कंसेप्ट जो है वो हमारी बहन जी आपको बताएगी। एसक्यू सबसे जरूरी है, एसक्यू के बिना आईक्यू और ईक्यू नहीं आता है। तो सब चुप हो गए जब वो उषा बहन ने चालू किया, बड़े सीरियसली सुनने लग गए क्या बताने वाली। तो ये होता है गेम खेलने का तरीका। जब हाई लेवल के बैठे हो तो यू प्ले गेम फ्रॉम हायर लेवल, और जब मिडिल ऑर्डर बैठे हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अभी तो मैं दोनों लेवल से प्ले कर रहा हूं, पर मेरे सामने अगर टोटल हाई फाई लोग बैठे हैं, टॉप लेवल वाले बॉसेस बैठे हैं, तो कभी भी नीचे से गेम मत खाली प्ले करो। नीचे से प्ले करना चालू करोगे तो वो आपकी पिटाई कर देगा, क्वेश्चन करता जाएगा। आप ऊपर से चालू करो जिससे उनका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाए। ये एक टेक्निक रहती है लेक्चर देने की, कि यू ब्लॉक देयर कॉन्शियस माइंड, पूछे ही नहीं, चलता रहा बस, सुनता रहा सुनता रहा, एंड में फिर वहां तक पहुंचा दो। तो इसीलिए ये कुछ टेक्निक रहती है। और ये प्रोग्राम भी मैंने गोवा का एग्जाम्पल बता रहा था, डॉक्टर सचिन मेरे साथ थे और एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, बहुत अच्छी फैक्ट्री थी और 20 लोगों को उन्होंने बुलाया था, 20 जीएम, जीएम लेवल के जनरल मैनेजर। अब हमने देखा, पहले हम दो, एक बहन भी मेरे साथ थी, तो वो बहन एज यूजल अपने नॉर्मल बैटिंग स्टार्ट की, ओपनिंग की। उसने सोचा कि शुरू नीचे से मैं करती हूं, तो वो एक्सपर्ट थी अपने फील्ड की, नीचे से उसने चालू किया। तो वो लोग तो बहुत ही आगे दौड़ रहे थे, ये लोग तो जीएम थे, जीएम यानी वो बोले खत्म नहीं करे सेंटेंस, उसके आगे का क्वेश्चन उससे पूछ ले, उनको मालूम था क्योंकि वो लोग भी इतना मैनेजर रहते हैं। तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जाए, वो खत्म नहीं करे तो क्वेश्चन। अब ये बहन थोड़ी नर्वस होने लग गई, अब मैंने सचिन को इशारा किया, अब तू इसको कुछ बोल बीच में, रोक नहीं तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये तो डर जाएगी बहन। तो फिर सचिन उठ के बोल दिया कि आप लोग जो कोई भी क्वेश्चन करना हो तो बाद में करना, नहीं तो ये जो फ्लो है बहन वो भी आपको बताएंगी, पर आपको धीरे धीरे अंदर तक ले जा रही है। उनका टाइम तो केवल 40-40 मिनट्स का ही था हम दोनों को। फिर मैं समझ गया कि ये लोग ईगो पर्सनालिटी वाले हैं, टाइट हैं बिल्कुल, यानी हम सब जानते हैं आप लोग क्या बताओगे, तो ऐसे जो टाइट लोग रहते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल, या गर्दन ऐसी करके। तो अब समझ गए कि इनको खोलना पड़ेगा, तो फिर ऊपर सामने का मारना है तो अभी सिक्सर से चालू करना पड़ेगा। तो ऊपर से चालू किया और कॉन्शियस माइंड उनका बंद कर दिया, किसी ने फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सब धीरे धीरे खुलते गए, हाथ पांव खुले, उनके पांव हिलने लग गए और ढीले हो गए। तो ये टेक्निक्स रहती है और फिर सब उन्होंने चीजें दी, पहले हमें गाड़ी वाड़ी नहीं भेजी थी लेने के लिए, सब गाड़ी वाड़ी हमें उन्होंने भेज दी। तो ये आपको खोलना पड़ता है, क्राउड को देखना पड़ता है, क्राउड को ऑब्जर्व करते जाओ। कभी भी एक चीज को लेकर मत बोलना चालू कर दो, जो यहां सिखाया वैसा का वैसा सबको सिखाओगे तो माताएं बैठी होगी उसको क्या मालूम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये गर्म का है, तो ऐसा नहीं करना। यू गो ऑन चेंजिंग, कहां किसको क्या जरूरत है उसके अनुसार फ्लक्चुएट करते रहो बीच बीच में, और अगर समझ में आ जाए बहुत क्राउड ऐसा है तो आप वैसे आप उसको वैरी करते रहो। अब कौन सी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, जो टफ पर्सनैलिटी वाले होते हैं, इनको कहते हैं हार्डनेस। एक पर्सनैलिटी इन्होंने बोला है कि इन लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा रहता है। इसमें हार्डीनेस में उन्होंने देखा कि इनमें दो कैरेक्टर्स रहते हैं, इन पर्सनैलिटीज में चैलेंजेस, ये लॉजिकल और इंटिट्यू, यानी एक तरफ तो वो लोग लॉजिकल सोचते हैं और दूसरी तरफ इंटिट्यू, यानी दो स्फीयर बताए ना आपको कल, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट क्या है लॉजिकल और राइट है इमोशनल है। अब दोनों का जो बैलेंस करके चलते हैं वो लोग लाइफ में सक्सेस रहते हैं, बिजी और इजी, एग्रेसिव एंड शाय, सीरियस एंड प्लेफुल। इसको मैं हमेशा कनेक्ट करता हूं कौन सी मॉडल से, सबसे अच्छा मॉडल हमारे सामने दिया गया इस पर्सनालिटी का श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक तरफ है बच्चा, मक्खन खा रहा है, बंसुरी बजा रहा है, प्ले कर रहा है, दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई सिखा रहा है, युद्ध, टफ और चाइल्ड, मास्टर एंड द चाइल्ड। कहां मुझे चाइल्ड बनना है, कहां मुझे मास्टर बनना है, ये खेल खेलना आना चाहिए। कहां मुझे लॉजिकल बनना है, कहां मुझे इमोशनल बनना है, ये आना चाहिए। टोटल हमारा जो फेलियर और सक्सेस इस पर डिपेंड करता है, चाहे ज्ञान की लाइफ में भी, कि आप कितना बैलेंस रखते हो। याद में बैठे हैं बाबा को याद करना है तो आप टोटल इमोशनल बन जाओ, बिल्कुल इमोशनल। वर्क प्लेस पे जाना है, सिचुएशंस का सामना करना है, तो वहां इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, वहां लॉजिकल होना पड़ेगा। तो कहां लॉजिकल है कहां इमोशनल है वो खेल खेलना आना चाहिए, कहां मास्टर कहां बच्चा। बच्चा यानी अब आपको सीट नहीं मिल रही है, आप हॉल में गए हैं, आप सोचते हो मेरे को सीट यही मिलना चाहिए, यही वीआईपी डाइनिंग खाने में खाना चाहिए, आपको नहीं मिला, भीड़ बहुत है। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्टबर्न होगी तो खड़े रहेंगे, भूखे रहेंगे, खड़े रहेंगे। और अगर आपकी इजी पर्सनैलिटी रहेगी, वहां जनरल डाइनिंग हॉल में भी जाके खा लेंगे, पीछे जाके आराम से बैठ जाएंगे। तो कहां मास्टर कहां बच्चा, ये दोनों कैरेक्टर आ गए तो आप देखो कहीं भी हार नहीं होगी। अभी मैंने देखा बाबा आए, कई लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं देख रहा था कि कुछ अच्छे सीनियर लोग भी थे, उनको बुलाया नहीं गया, वो लोग भी उस क्यू में जाके भीड़ में उस भाई ने उनको रोक लिया। अब मैं देख रहा था कि ये 30 साल से ज्ञान में है और अभी तक इसको ये नहीं समझ में आया कि जब तक बुलाया नहीं जाए स्टेज पे आप क्यों जाते हो। अब वो भाई तो जानता नहीं, उसने रोक लिया वहीं। क्या हुआ, ये इमोशनल। वहां क्या चाहिए था आपको, लॉजिकल। मेरी जरूरत है क्या भगवान को, भगवान को जरूरत है वो मुझे बुलाएगा, नहीं जरूरत है तो क्यों नहीं आराम से बैठे रहो, आप भी राजा हो वो भी राजा है। तो हम लोग कहां इमोशनल हो जाते हैं रॉन्ग जगह पे और खाते हैं। वो उसकी क्या रिस्पेक्ट रही, रोक लिया गया, नहीं मिलने दिया गया, मैंने देखा उसको लास्ट में भगा दिया। 6-7-10 लोग थे ऐसे। तो जब तक बुलाया नहीं जाए, आपकी जरूरत नहीं है, तो आप अपने में आराम से एंजॉय करो। तो कहां लॉजिकल होना है, कहां इमोशनल होना है, दोनों का बैलेंस हमें जीवन में आना चाहिए। नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल यानी किसी चीज को जज नहीं करो। जैसे कल अवधेश भाई ने भी थोड़ा रॉन्ग रखा, तो वो क्या देखना चाहते थे। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं, एकदम जज करने लग जाते हैं। अभी उसको एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करो, पहले देखो ये व्यक्ति क्या जाता। और ये एक साइकेट्रिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने कोरिया वार के ऊपर जो सोल्जर्स गए थे अमेरिका के, उनका लाइफ स्टाइल स्टडी किया था और देखा जो लोग ज्यादा जिंदा रहे उस वार में, उनमें था कि वो लोग खुद के लिए और दूसरों के लिए काम करते थे, उनमें सिनर्जी थी। सिनर्जी को कहते हैं एक कनेक्टिविटी थी खुद में और दूसरों में, तो वो लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। ये कल आपने देख ली। नेक्स्ट, ये है हमारा माइंड बॉडी का कनेक्शन। माइंड से कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, बॉडी के टारगेट ऑर्गन, जो कल कह रहे थे टारगेट ऑर्गन, यानी हर व्यक्ति का एक ऑर्गन कमजोर होता है और स्ट्रेस वहां से निकलता है। क्योंकि परमात्मा ने यहां प्रेशर कुकर जैसा सेफ्टी वाल तो लगाया नहीं कि प्रेशर बढ़ गया सीटी बजने लग जाए मैं नॉर्मल हो जाऊं। अगर ऐसा कर देता तो कोई जरूरत नहीं थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, सीटी बजने लग जाए ठीक हो जाओ वापिस। सीटी नहीं दी उसने, सिग्नल नहीं दिया, इसीलिए क्या होता है सब हमारे अंदर जाता है। तो माइंड बॉडी, माइंड में जो आता है वो अंदर जाता है, इसीलिए का हर विचार हमारे शरीर के टारगेट ऑर्गन में जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये स्ट्रेस का इफेक्ट है, असुरक्षा की भावना आती जाएगी, सेंसिटिव नेचर होने लगेगा, आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म जल्दी उनको अफेक्ट करेगा, सस्पिशियस नेचर हो जाएगा, वो हरेक को बड़े उससे देखेंगे, सस्पिशियस नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट, इरिटेशन बढ़ता जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन पावर कम होता जाएगा। नेक्स्ट, और यही लोग फिर अगर ठीक से मैनेज नहीं करते तो नींद ज्यादा आएगी या कम आएगी, ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे, कुछ सिगरेट अल्कोहल लेना चालू कर देंगे, ड्राइविंग तेज करेंगे, लोगों से मिक्स नहीं होंगे, अकेले अकेले रहेंगे, ये स्ट्रेस के फिजिकल बिहेवियर सिम्टम्स हैं। और सबसे ज्यादा असर बॉडी में स्ट्रेस का हमारी गर्दन और छाती में आता है, चेस्ट मसल्स और नेक मछली। गर्दन जल्दी अकड़ जाती है इन लोगों की, जो अकड़े रहते हैं तो उनकी गर्दन में स्पॉन्डोलाइटिस आर्थराइटिस जल्दी आ जाती है। इसीलिए गर्दन को कैसे बनाया गया, यों यों ऊपर नीचे, तो इसलिए बार बार एक्सरसाइज करना चाहिए। जब कभी गर्दन अकड़ने लगे, लगे कि मैं किसी चीज को बहुत पकड़ रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, तो एक्सरसाइज करो। नमाज वाली जो एक्सरसाइज, इसलिए नमाज सिखाई गई कि जब वो 6 बार नमाज करेगा तो 6 बार वो इधर उधर करेगा, पीछे देखना आगे देखना है, इसीलिए ये गर्दन को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया, स्टिफ नहीं बनाना। और छाती भी मसल्स, चेस्ट मसल्स, उनको चेस्ट पेन चालू हो जाता है। नेक्स्ट, और ये बीमारियां उनको जल्दी होती, जिसमें हृदय रोग की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, ये 4 बीमारी मुख्य उनको जल्दी होती है। इन्फेक्शन बार बार होंगे, बार बार सर्दी होगी, बार बार गला खराब होगा, जल्दी जल्दी उनको तकलीफें होंगी, जोड़ों में दर्द होगा, डॉक्टर कह रहा है कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड ज्यादा इकट्ठा होगा तो बीमारी। आईबोला इज ए वायरल इन्फेक्शन, रिसेंटली दे हैव जैकॉब डिजीज एंड आई बोला जो हेमोरेजिक फीवर हो जाता, और बच्चों में भी देखा ये प्रॉब्लम आते हैं, जिनके पेरेंट्स स्ट्रेसफुल रहते हैं उनके बच्चों में भी स्ट्रेस आ जाती है, उनका भी स्कूल का परफॉर्मेंस कम होगा, डरा डरा रहेगा, ग्रोथ नहीं रहेगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उनका कम रहेगा तो वो शॉर्ट हाइट रहेगा, इन्फेक्शन बार बार होंगे, एग्जामिनेशन के समय फीवर आएगा। और ये देखा जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके अंदर भी जब अगर प्रेग्नेंसी है तो उस समय भी उनको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, मैं इसको नहीं लेता, कैसे होता है माइंड से अंदर तक मैसेज कैसे जाता है। नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट क्या है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में था जब इसने विंबलडन जीता, विलियम ने, वीनस विलियम, जो दो बहनें हैं सेरेना एंड वीनस, जो कि आज टेनिस की मास्टर हैं दोनों सिस्टर्स, उनकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। इसने अपने मैच जीतने के बाद, विंबलडन लास्ट ईयर का जीतने के बाद बोला, जब कभी भी मैं माइंड में स्ट्रांग रहती हूं तो मैं मैच जीत जाती हूं, और जिस दिन मैं माइंड में कमजोर होती हूं मैच को हार जाती हूं। तो पहला मैनेजमेंट है कि आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, टफ बनाइए। अभी सॉफ्ट का जमाना नहीं है, अंदर से स्ट्रांग हो बाहर से सॉफ्ट हो। इसीलिए नारियल को तोड़ा जाता है भगवान के सामने। अपन अपने ईगो को तो फोड़ नहीं सकते, नारियल बाहर से हार्ड रहता है अंदर से सॉफ्ट रहता है। हम लोगों की भी पर्सनैलिटी बाहर से हार्ड हो जाती है, अंदर से डरपोक हो जाते हैं। अंदर से टफ होना है और बाहर से सॉफ्ट होना है। ह्यूमन टच, ह्यूमन टच हमारा बाहर का होना चाहिए और अंदर स्टील जैसा, विल पावर जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू शुड बी लाइक ए स्टील इन साइड, योर विल पावर शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं वो मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कद्दू नहीं बनो, आम बनो, मैंगो पर्सनैलिटी, मैंगो, मैंगो बनो। ये मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि गिरीश भाई बताएंगे, मैनेजमेंट ऑफ द माइंड। नेक्स्ट, और कभी भी प्रॉब्लम आए घबराइए नहीं, पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर उसमें से सॉल्यूशन निकालिए, मेरे पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। 10 सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, उसमें से एक सॉल्यूशन निकालिए करेक्ट और उसके ऊपर एक्ट करिए। 10 में से मैंने एक निकाला, उसके ऊपर एक्ट करिए, फिर बैक मत जाइए, पोस्टपोन मत करिए, एक्ट करना अच्छा है। और फिर उसको इवेल्युएट करिए कि मैंने जो सॉल्यूशन निकाला उसका क्या रिजल्ट रहा। डर के मारे ज्यादातर लोग सॉल्यूशन नहीं निकालते, बैठ जाते, नहीं 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 नहीं, दो महीने, आज मीटिंग होगी इसमें से हम डिसाइड कर लेंगे, और फिर आता है पेपर में दो महीने बाद मीटिंग होगी। तो ये क्या दिखाता है, फियर। वो लोग डरते हैं, अगर ये सॉल्यूशन निकालें तो आप 10 में से एक सॉल्यूशन निकालिए और उसके ऊपर एक्ट करिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कल बता रहा था मैं, एक्सेप्टेंस। आप अपने को एक्सेप्ट करिए, ये दुनिया पूरी हमारे खुद के इमेज से चलती है। मेरा अपने प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं, जो हिंदी में कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मेरे को जो रोल दिया गया है, जिस घर में पैदा हुआ हूं, जिस सेंटर में मुझे भेजा गया, बहुत अच्छा है। तो जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो तब मेरे दरवाजे खुलेंगे। अगर मैं अपने आप से ही लड़ता हूं तो मेरा ब्लॉक चालू हो जाता है। इसीलिए पहले कहा आप अपने को एक्सेप्ट करिए, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मेरी छोटी हाइट है कोई बात नहीं बहुत अच्छा, मेरा कलर ऐसा बहुत अच्छा है। तो कभी भी किसी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाए। कोई भी आपसे पूछे कैसे हो, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, आप ठीक हो, दुनिया ठीक है। ऐसे नहीं बोलो मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक हो। कई लोग कहते हैं मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक नहीं हो, दुनिया ठीक नहीं है, रोते रहते होंगे इस दुनिया। तो नहीं, ऐसा नहीं बोलो। आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीबडी ओके। हे परमात्मा, मुझे ताकत देना उन चीजों को एक्सेप्ट करूं जो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, और उनको चेंज करूं जो मैं कर सकता हूं। मेरे हाथ में क्या है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, जो रोल मुझे दिया गया है, और जो चीज मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं ठेका लूं, सब वीकेज स्ट्रांग हो जाएं, चेंज हो जाएं, मेरा नहीं है, वो उसका काम है, उसको करना आएगा। तो मैं उसमें ना जाऊं, मेरा रोल है कि मैं अपने को चेंज करते जाऊं, मेरे में क्या कमी है। तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। इसलिए हमेशा सेल्फ इमेज अच्छा रखिए, जो बाबा के शब्दों में सम्मान को अच्छा रखिए, एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। ये साइकोलॉजी भी आजकल कहती है, कोई भी साइकोलॉजी का मेन प्रिंसिपल रहता है कि आप उसके सेल्फ इमेज को ठीक कर दो। बस अगर व्यक्ति का सेल्फ इमेज ठीक हो जाता है, वो व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर देता। सेल्फ इमेज कमजोर है तो कुछ भी कर लो, दवाई दे दो, वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने ठान लिया मुझे ठीक नहीं होना है, मुझे ऐसा ही रहना। तो एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तो कहो यस थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं आ रहे मेरे में तो ऐसा नहीं था, ये तो ड्रामा में था। एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स, यस थैंक यू वेरी मच। दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट्स दो। कोई भी आपके सबऑर्डिनेट्स अच्छा लेक्चर देके आते हैं, छोटी बहन हो चाहे कोई भी हो, कोई कल हमारे यहाँ हमारा मैगराज गया नीचे एक्सीडेंट में, नीचे 80 फुट तक गया, सुबह बोला भाई सब मैं नीचे गया था रात को, तो मैंने भी कहा वेरी गुड, और दादी ने भी देखो क्लास में उनको दिया कॉम्प्लीमेंट्स। ये लीडर का कैरेक्टर रहता है, लीडर हर सिचुएशन देखता रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिले उसको कॉम्प्लीमेंट दो, उसमें कंजूसी मत करो, एट द राइट मोमेंट दो। जब कभी भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है सबके सामने दो, भरी सभा में दो। देखो दादी हमेशा करती है, ये लीडरशिप का सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर रहता है। कोई भी आपका सबऑर्डिनेट जूनियर काम करके आए उसको बिल्कुल पीठ थपथपा दो, बहुत अच्छा किया, अभी डेथ हुई, उसको 10 मिनट में बोला तुझे जाना है बैंगलोर छोड़ के आना है, बॉडी को बैंगलोर से भी आ गए हुबली, 1 घंटे में सब तैयार हो गया, कपड़े लेके आ गया, 2 दिन तक चलते रहे, छोड़ के भी वापस आ गए। और जैसे ही आया हम सब बाहर खड़े थे, सबने फूल ले लिए और हम सब ने उसको गुलाब के फूल दिए। जैसे ही उसकी गाड़ी आई वो चक्कर मार के आया, तब तक फूल हमने इकट्ठे कर लिए। तो उसको क्या लगा कि देखो मेरी यहां जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट राइट टाइम पर आप उसको दो, कितना अच्छा उसने काम किया, नहीं तो बाबा का टर्न है, मैं अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी दूर है, रास्ते में खाना कहां मिलेगा, कुछ नहीं। उसको एड्रेसेस दी, उसके साथ 2 भाई और थे, बहन जी यहां बैठी है, सब लोग चल दिए रात के 12 बजे। 3 दिन 4 दिन में शायद वापस, 4 दिन लगे टोटल आने जाने में, वापिस आ गए और वापिस बाबा से मिल भी लिए। तो एक कदम हमें उठाना पड़ता है, फिर बाबा हमें परमात्मा मदद करता। तो गिव कॉम्प्लीमेंट, स्पीक वेल ऑफ योरसेल्फ। आप लोगों को बताइए आप क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहिए। अच्छे लोगों से मिलके रहिए और आप हमेशा अपने को ठीक रखिए। और सबसे बड़ा यही मैं सिखाता हूं, बी नेचुरल। अब आप देखो एक्स प्रेसिडेंट है क्लिंटन, क्या कर रहा है, जूते हाथ में पकड़कर जा रहा है। अगर मैं प्रेसिडेंट हूं इस कंट्री का, मैं बहुत बड़ा इंचार्ज हूं, अगर ये सोचूं कि मैं जूते हाथ में पकड़ के जाऊं, क्या सोचूंगा मैं, इंडियन, टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी, लोग क्या कहेंगे, हाथ में इतना बड़ा आदमी नंगे पांव जा रहा हाथ में जूते पकड़ के, लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कवरिंग करने की कोशिश करते हैं और उसमें एनर्जी चली जाती है। इसलिए अमेरिकन कल्चर क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कहा बी नेचुरल, आप जो हो अच्छे हो, हमें आपके काम से मतलब है, आपके बाकी दूसरी चीजों से मतलब नहीं है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि बी नेचुरल, आप जो हो जैसे हो अच्छे हो। मेरे को जो अच्छा ड्रेस लगता है अच्छा लगता है, मुझे टाई पहनने का शौक नहीं है, दूसरे को टाई पहनने का शौक है, अच्छा वो पहने, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं कॉपी करूं नहीं, मैं भी कोट पहन के टाई लगा के लेक्चर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, अंदर ही अंदर घुटन होगा। मेरी पर्सनैलिटी है ओपन, मुझे कुछ नहीं ईजी चाहिए। तो मेरी चॉइसेस अलग है, आपकी चॉइसेस अलग है, इनकी अलग है, सबको ही अपनी चॉइस को देखकर आगे बढ़े। बस ये समझ लिया तो फिर स्ट्रेसेस का भी इजी हो जाती है। आप देखो पुटिन, रशियन प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रहा है, पॉटरी कर रहा है। अब इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े कंट्री का, जब उसको समय मिलता है क्या करता, वो इसका भी एक्सपर्ट है ये जूडो, जहां भी जाता है जापान में जूडो खेलना चालू कर देता। तो अब इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर फिर भी वो चीज करता है जो उसको अच्छी लगती है। तो हमें भी लाइफ में बीच बीच में वो चीज करना चाहिए जो हमें अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता गाना सुनना, अच्छा सुनो गाना, अच्छा गाना अच्छा लगता गाइए, रोना अच्छा लगता रोइए, जो अच्छा लगता है करिए, अंदर मत दबाइए। सबके सामने नहीं रोना है तो बाथरूम में जाकर गाइए, बाथरूम में बंद करिए, गाना गाइए, बी नेचुरल। तो पर्सनैलिटी को कैसे मोल्ड करें इसको छोड़ देते हैं आगे। अब चिंता आए, वरी आए, इसको एक अच्छा सिंपल सॉल्यूशन एक में आया था आर्टिकल, तो वो मैं बता देता हूं। एंजाइटी भी क्या है, एक इमोशन है, क्योंकि अलग अलग मैनेजमेंट है स्ट्रेस के। पहला मैनेजमेंट है माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल, इन चार में टोटल इसका मैनेजमेंट आता है। और अलग अलग फैक्टर्स आप ले सकते हो, क्राउड का रेटिंग लेकर, क्या क्राउड है। मैं आपको इमोशनल का केवल एक ही बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत गहरी साइकोलॉजी रहती है, तो वो जनरली हम हाई क्राउड के लिए रखते हैं। तो इसमें वरी को उसने बताया WORRY, वर्स्ट वुड हैपन, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। एंजाइटी कैसे आ रही है, कल मैंने बताया था ना एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, तीन तरह की स्ट्रेस बताई ना, कौन कौन सी बताई, करंट, रेसिडुअल एंड एंटीसिपेशन। तो ये एंटीसिपेशन वाली, अरे क्या होगा, वर्स्ट वुड हैपन, उस समय सोचो गुड विल हैपन, ओ ओबेस विथ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। कई लोग इसमें प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, और पर्टिकुलरली हमारे यहां भी हमने देखा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि हम सोचते हैं कि रिजल्ट हमारे अच्छे होना चाहिए और उसको पकड़ के सोचते हैं, उसके कारण हम सोचें ऑप्टिमिस्टिक, मैं भी जो काम कर रहा हूं अच्छा ही उसमें होगा। रिमेंबर नेगेटिव मेमोरीज, आर से वो व्यक्ति ये पॉजिटिव सोचेगा, ये रेस्टलेस रहेगा, ये ईज रहेगा, ये हमेशा नेगेटिविटी को यस करेगा और ये नो करेगा। जैसे ही चिंता वाला विचार आया उस समय कहेगा नहीं ये मेरे लायक नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी। तो ये असर्टिव पर्सनैलिटी है, इसको दो है उसमें, जो कल डिस्कस कर रहे थे। असर्टिव पर्सनैलिटी आजकल टाइप सी भी कहते हैं, असर्टिव यानी आप राइट समय पर राइट तरीके से लोगों के सामने अपनी भावनाओं को ठीक तरह से रखना, इसको कहते हैं असर्टिव पर्सनैलिटी। एक्सप्रेस योर इमोशन इन ए प्रॉपर वे, झगड़ के नहीं। हम लोग भी डिस्कस करते हैं आपस में, डिसएग्री भी होते हैं, पर हम समझते हैं कि अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें लेना है। तो प्रॉपर वे में आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, डिसएग्री हो पर इसका मतलब नहीं कि मुझे दूसरों को हर्ट करना हैगा। से नो, जब आपको नो करना है तो नो करिए। अभी आपको सिर दर्द है और आप सोच रहे हो कि आपको फोर्स किया जा रहा है, तो नहीं मैं आज पिक्चर नहीं जाऊंगा, मेरे को तकलीफ है, आप लोग जाइए। तो लर्न टू से नो व्हेन इट इज नेसेसरी, मेरी तकलीफ है तो मैं कह सकता हूं, मैं जरूरी नहीं कि दिखाने के लिए तकलीफ हो रही है और मुझे ही कंट्रोल करना है, तो स्ट्रेस रहेगा। असर्टिव उसको कहते हैं, प्रॉपर वे में अपने इमोशंस को बताते जाए। नेक्स्ट, ये कई पॉइंट्स हैं इसके। जब कभी भी गलती हो तो कोई बात नहीं, जैसे कल भी कहा कि वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट भी हैं इम्परफेक्ट भी हैं। गलतियां होना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। गलती हो गई इसका गिल्टी फीलिंग नहीं आया मेरे में, उसको करेक्ट करें, पुश्चात करके उसको चेंज करें। मिस्टेक्स एक नॉर्मल फिनोमेना है, फेल्यूर एक नॉर्मल फिनोमेना है, उसको अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो कोई टेंशन नहीं आता। नेक्स्ट, ये साइकोलॉजी इमोशनल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, ये जो दो बताए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट इज ए लॉजिकल एंड राइट इज ए इमोशनल, दोनों का बैलेंस रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं हम एटीट्यूड्स पे, दृष्टिकोण पर, कि हर दृष्टिकोण को अगर हम चेंज करेंगे तो हम सिचुएशन का सामना अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम को आप उसी लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते जब ये प्रॉब्लम को आपने क्रिएट किया था, आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दृष्टिकोण का अर्थ है कि मुझे हर प्रॉब्लम को नए दृष्टिकोण से देखना है। ज्यादातर क्या होता है, हम कोई भी प्रॉब्लम को ओल्ड मेमोरी से उसको मैचिंग करने की कोशिश करते हैं, और ओल्ड कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कहती है कि नहीं, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स भी स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसलिए एटीट्यूड का अर्थ है हर सिचुएशन का सामना मैं नए दृष्टिकोण से करूं, उसको पास्ट की मेमोरी से कलरिंग न करूं। एक एटीट्यूड पे बहुत अच्छी स्टोरी थी, उसको सीधा कर दिया, कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें एटीट्यूड क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति सोचता है अपने बच्चे को, जो बहुत धनवान था, इस बच्चे को ले जाता है एक रात बिताने के लिए एक गरीब के घर। उसने सोचा इस बच्चे को गरीबी क्या होती है वो पता लग जाएगी। रात भर वो बच्चा उस गरीब की झोपड़ी में रहता है, और सुबह जब वापस आता है तो उसके पिताजी पूछते हैं, तूने क्या देखा? तो वो बच्चा बोलता है, हमारे घर में तो लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स हैं, पर उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, आकाश में चांद सितारे हैं, हमारी झील काउंटर पे खड़े रहते हैं, जैसे ही कुछ हुआ तो उनकी कंप्लेंट चालू हो जाती। तो नेगेटिव वाले हमेशा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखो। अब देखो, बीच बीच में आप कुछ इंसर्शन कर दिया करो। अब इसमें क्या, दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त कहता है, इस साल मैं 10वीं का एग्जाम दे रहा हूं, अच्छे एग्जाम अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूंगा। नेक्स्ट, अब वहां देख लेना कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं बैठा है, नहीं तो फिर ये जोक मत बोलना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, तो इसलिए पहले देख लेना कोई पॉलिटिक्स नहीं, और उनको ही हंसने दो, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करो क्या उसमें था। तो हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखो। एक व्यक्ति रोटरी का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है, हार जाता है, घर पे आता है, चिंता में बैठ जाता है। वह उसकी वाइफ बड़ी पॉजिटिव थी, तो वो कहती है, कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट वहां हार गए, घर में तो तुम वाइस प्रेसिडेंट ही हो, मैं प्रेसिडेंट हूं। एक बच्चा इतिहास में फेल हो गया, हिस्ट्री में, घर आया, उसकी मदर बड़ी पॉजिटिव थी, अभी सब मदर पॉजिटिव हैं, तो वो उसको बोलती, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करना, पास हो जाना फिर से। उसके फादर शाम को आए, बड़े गुस्से में आए, ये बच्चा इतिहास में क्यों फेल हो गया? उसकी मदर बोलती है, क्यों नहीं फेल होगा, उससे वो प्रश्न पूछ रहे थे जब वो पैदा भी नहीं हुआ था हिस्ट्री में। तो हमेशा हर चीज को आप कन्वर्ट कर दो, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में। यहां एक माता आई थी 2 साल पहले, उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ का, हमने उसको ये प्लास्टर करवा दिया, तो बोल, मैंने कहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बाबा के यहाँ आकर फ्रैक्चर हो गया? बोले, यार एक बहुत अच्छा लग रहा है, पांव का तो नहीं है, हाथ का है, मैं क्लास सुन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, पर सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि अब मुझे घर जाकर काम 3 हफ्ते नहीं करना पड़ेगा, 3 हफ्ते आराम मिलेगा। तो भगवान जब फ्रैक्चर देता है तो यानी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, इसलिए भगवान क्या कहता है, चलो कंपलसरी रेस्ट लो। तो हर सिचुएशन को हम चेंज करते जाएं, कन्वर्ज करते जाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये पॉजिटिव लैंग्वेज और नेगेटिव लैंग्वेज आप लोगों को मालूम है, ये नेगेटिव लैंग्वेज है, ये पॉजिटिव है। किंतु परंतु क्या, ये नेगेटिव है, उसको कन्वर्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट। ऑल आउट, ये बहुत जरूरी है और ये हमारे ज्ञान में भी जरूरी है। जब कभी भी कहीं सिचुएशन आए तो 100% खो दिए। एटीट्यूड का मतलब है ए से लेकर अगर जेड तक जाएं, ए को नंबर 1 दें और जेड को 26 दें तो हम देखें ये 100 मार्क्स आते हैं एटीट्यूड में। तो एटीट्यूड का मतलब है जब कभी भी कोई चीज आए, प्रॉब्लम आए, अटैक 100%। आपके सामने 5 स्टूडेंट को कोर्स कराना, 100% एक्ट करिए। ऐसा नहीं सोचिए एक को मैं करा रहा हूं क्या है, कोई नहीं देख रहा है। अटैक 100%। आपका वो एक स्टूडेंट भी शायद कोई पावरफुल होगा, वो आपको आगे रास्ता खोल देगा। तो जब कभी भी कोई चीज आए अपने अटैक को, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑल आउट, नॉट होल्ड आउट। पकड़ो मत फिर उस समय, अरे करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, एक कदम बढ़ा के फिर कूद पड़िए, इसको कहते हैं ऑल आउट। नहीं तो क्या होता है, अगर होल्ड आउट करते हैं हम, एक कदम लेते हैं फिर पीछे बढ़ जाते हैं। तो होल्ड आउट नहीं करें, उस समय ऑल आउट करें। एक बहुत अच्छा रियल वो है, हेनरी फोर्ड को अपने कार के लिए इंजन चाहिए था, एक स्पेशल इंजन फोर्ड कार में रहता है, V8 इंजन। उसके लोगों ने कहा नहीं, मुश्किल है, बन नहीं सकता। फिर धीरे धीरे 2-3 बार जब उसने उनको परसुएट किया और उन्होंने इंजन बना दिया, तब उसने अपने कोटेशन में कहा मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये नहीं जानते हैं कि ये नहीं हो सकता। फर्स्ट अगर हम रिस्पॉन्स देते नहीं हो सकता तो हमारा माइंड क्या करता है, मैसेज देता सबकॉन्शियस को, बॉडी को नहीं हो सकता, अरे डिफिकल्ट है, तो हम भी डीले हो जाते हैं। कभी भी ये रिस्पॉन्स नहीं दीजिए, ऑल आउट करिए, तो आप देखेंगे कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना अच्छी रीति से कर सकते हैं। ये है डॉक्टर दीक्षित। अभी इनको रिसेंटली बहुत बड़ा अमेरिका में अवार्ड मिला, कुछ डॉलर्स, हजारों डॉलर्स का। ये क्या है, क्रिपल्ड हैं। एक बार कार एक्सीडेंट हुआ, पैरालिसिस हुआ, 2 बार हार्ट अटैक हुआ, लैरिंग्स का कैंसर हुआ, फिर भी व्हील चेयर में प्लास्टिक सर्जरी हर साल करते हैं, गरीबों के लिए इंडिया में आते हैं, 3-3, 4-4 महीने रहते हैं और फ्री सर्जरी करते हैं। अब व्यक्ति देखो फिजिकली क्रिपल्ड है, पर मेंटली उसने एक्सेप्ट नहीं किया और ऑल आउट रहा, तो आज वो वर्ल्ड का एक बहुत फेमस डिग्निट्रीज बन गया, जैसे कल सुबह बताया स्टीफन हॉकलिंग, और ये है डॉक्टर दीक्षित। इसको बहुत बड़ा अभी अवार्ड मिला और वो पैसा भी इसने बच्चों के फंड में डाल दिया कि मैं बच्चों की फ्री इक्विपमेंट्स और सर्जरी करूंगा। अब लास्ट स्लाइड है ये हमारी, 4 सिचुएशन को कैसे टैकल करना। ये है सेल्फ, ये है रिलेशन, ये है वर्क, ये है सिचुएशन। ये 4 प्लेसेस है। सेल्फ में स्ट्रेस कहां से आता है, हमारे दृष्टिकोण से आता है। तो सेल्फ को ठीक करना है, दृष्टिकोण को ठीक करना है, तो मुझे कौन सी शक्ति चाहिए, पावर टू विदड्रॉ एंड पावर टू पैकअप। पैकअप यानी समेटने की शक्ति और विदड्रॉ करने की। बिहेवियर में, रिलेशन में कहां प्रॉब्लम आता है, संबंधों में, हमारे बिहेवियर से पता लग जाएगा इसका ये मेरे से बात नहीं कर रहा, तो यहां मुझे क्या करना पड़ता है, टॉलरेट और एकोमोडेट। वर्क पे क्या प्रॉब्लम आता है, लॉजिकल प्रॉब्लम आता है, तो वर्क में हमें क्या करना है, लॉजिकल को करेक्ट करना है, डिसाइड एंड डिस्क्रिमिनेट। निर्णय शक्ति हमारी अच्छी होना चाहिए। सिचुएशन आए, परिस्थितियां आए, तो उस समय सबसे पहला अटैक कहां होता है, इमोशनल होता है। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया हार गई या जीत गई, लॉटरी आ गई 1 करोड़ की, कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों हुआ, इमोशनल हो गए, रो रहे हैं, पिक्चर में कुछ चल रहा है, रोने लग गए, इमोशनल हो गए। अपने ज्ञान में भी कई जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं इमोशनल आते हैं सिचुएशंस, तो उस समय हमें अपने इमोशंस को ठीक मैनेज करना है, फेस करने की शक्ति उस समय हमारे में आना चाहिए। तो ये 4 परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये संबंधों में सुधार, ये अलग चैप्टर है। नेक्स्ट, अब आप ये लास्ट, हाँ अब ये दिखाइए, एक सेंटेंस है, आई हैव कॉमन सेंस इन ऑल, माइन एंड देयर इंटरप्रिटेशन, लिसनिंग टू मी एंड लर्निंग फ्रॉम इट मेक लाइफ इजी. आई हैव कॉमन सेंस इन ऑल, माइन एंड देयर इंटरप्रिटेशन, लिसनिंग टू मी एंड लर्निंग फ्रॉम इट मेक लाइफ इजी. इसको एक सेंटेंस में जोड़कर बनाइए. तीन शब्द काट सकते हो आप इसमें से और एक अच्छा स्टेटमेंट बनाइए इसमें से. यह जैसे जुड़ा हुआ सेंटेंस नहीं है, आप इसको एक जोड़कर अच्छा बनाइए और कुछ शब्द निकाल दीजिए आपको जो लगता है अच्छे नहीं है इसमें. मेरे ख्याल से तीन शब्द ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है इसमें, उसको निकाल सकते हैं. फिर आ गया, ऑल हैव कॉमन सेंस इन लिसनिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन एंड लर्निंग फ्रॉम इट मेक लाइफ इजी. तो ये जो आय शब्द क्या है, ईगो, माइंड ईगो, तो इसमें से आय माइंड निकालकर ये एक तीन सेंटेंस बना दिए. लास्ट है, लव, अनकंडीशनल लव नोज नो कॉन्स्टेंट. अनकंडीशनल लव अगर हम देते हैं, ये सबसे पावरफुल हीलर है. ह्यूमैनिटी का पूरा खेल इस अनकंडीशनल लव पर चलता है. इसका फ्लो अगर हम लाइफ में बनाते रहते हैं, तो अगर हर क्षण को हम इस अनकंडीशनल लव से जीते हैं, हर सेकंड को एंजॉय करते हुए चलते हैं इस यात्रा में, तो हमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आते, क्योंकि हर सेकंड हमारे लिए अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आपकी फैमिलीज को, आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां जहां से आप आए हैं उन सबको बेस्ट. अभी एक गाना सुनेंगे और आप भी उस गीत को अंदर अंदर चलाना, पावरफुल, और गाना होंगे कामयाब एक दिन. गाइए, एक्सप्रेस इट आउट, गाते समय भी ऐसे मत करिए, बोलिए. कोई गा सकता तो आ सकता.
शांति करो, होगी शांति करो, होगी शांति करो, एक दिन ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, शांति करो.
आप विजुअलाइज करिए कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपने कंप्यूटर में फिट करिए, आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं. आस पास जो भी आपके पास बैठा, हाथ राइट वाला उसको दे दिए, साथ साथ चलना.
पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन, खुलेंगे साथ साथ हाथों में हाथ, चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन.
All the best. Thank you very much.